लेकिन बाकी सबके सब दौड़कर अब वहां गा गए थे। वंशिका, रौनक, एंजल, अविनाश, साथ ही साथ रश्मि, आकाश, सुमित, राधिका, जैसे ही उन सबने ये नज़ारा देखा तो सब चौंक गए और एक साथ चिल्लाकर बोले, रुको, रुक जाइए नानीमा, प्लीज़ रुक जाइए नानीमा, ये क्या कर रही हैं आप? क्योंकि उन सबने वहां आते ही उन्होंने चादर के नीचे से ध्रुव और आहान की हल्की सी झलक देख ली थी। तब नानीमा ने उन्हें अनदेखा करते हुए थकावट से कहा, मुझे लगता है ये उस बदमाश राजवीर के आदमी हैं और ये मुझे मारने आए हैं, बस इसलिए मैं इन पर हमला कर रही हूँ। और तुम सब क्या देख रहे हो, फटाफट से पुलिस को बुलाओ, इन गुंडों को पुलिस के हवाले करो। लेकिन तभी अचानक नानीमा को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। आहान ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, अरे मेरी प्यारी तोप नानीमा, आप क्या कर रही हैं? फिर रोते हुए मुंह फुलाकर बुदबुदाया, ध्रुव के बच्चे, ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, मैंने ये हॉकी स्टिक खरीदी थी। अगर मुझे पता होता इस कमरे में नानीमा शिफ्ट होने वाली है तो मैं इस कमरे में अपना सामान रखता ही नहीं। वो फिर से रोने लगा। लेकिन तभी आकाश दनदनाते हुए आगे आया और अपनी बाहें समेटते हुए बोला, लेकिन तुम दोनों इस वक्त यहाँ नानीमा के कमरे में क्या कर रहे हो? तभी ध्रुव और आहान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आहान झट से जवाब देते हुए बोला, ये सारी गलती इस ध्रुव के बच्चे की है, हमें लगा कि हम दोनों पर इन लड़कियों ने जादू कर दिया है, हमें इनके बिना नींद नहीं आ रही है और हमें बार बार उनकी याद आ रही थी, तो हम तो सिर्फ इस जादू से बचने के लिए नानीमा से कुछ ताबीज़ लेने आए थे, हमें क्या पता था कि नानीमा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी। आहान फूट फूट कर रोने लगा ताकि कोई उसे ज़्यादा न डांटे। आहान इस वक्त रोता हुआ बहुत मज़ेदार लग रहा था। जैसे ही उसने रोते हुए कहा कि उसे रौनक के बिना नींद नहीं आ रही थी और ध्रुव को वंशिका के बिना नींद नहीं आ रही थी, वंशिका और रौनक दोनों के गाल शर्म और हया से लाल होने लगे। उनकी आंखों में खुशी की एक अलग ही चमक थी। ध्रुव आहान का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। बातों बातों में वे क्या क्या बकवास कर रहे थे। तभी आहान ध्रुव का हाथ झटक कर चिढ़ते हुए आंखें दिखाकर बोला, अब तू मुझे कोहनी मार कर क्या कहना चाहता है, बताना अब, आउच आउच। फिर ध्रुव को अनदेखा करके आहान दुखी होते हुए बोला, अब पता नहीं मैं कल रात कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं, या कल रात को मुझसे कुछ होगा भी या नहीं होगा, पता नहीं मैं अब सुहागरात कैसे मनाऊंगा। एक बार फिर आउच आउच कहते हुए वो रोने लगा। नानीमा भी अब खुद को रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंसने लगी। नानीमा को हंसते हुए देखकर आहान अपने होश में वापस आया। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ और उसकी नज़रें बाकी सब पर पड़ी तो वो तुरंत भागकर अपने कमरे में चला गया। ध्रुव भी नज़रें चुराते हुए फटाक से उसके पीछे पीछे दौड़ लगाकर पहुंच चुका था। उन दोनों को इस तरह भागते हुए देखकर सब लोग खिलखिलाते हुए पेट पकड़कर हंसने लगे। आकाश बात संभालते हुए नानीमा से बोला, नानीमा अब आप आराम कीजिए, इन दोनों को तो आप जानते ही हैं कितने बदमाश हैं। तभी नानीमा वंशिका और रौनक को देखकर नटखट अंदाज में हंसकर बोली, तुम दोनों ने मेरे मासूम बच्चों पर क्या क्या काला जादू किया है, हाँ देखना मैं कल ही पंडित जी से मिलकर ताबीज लेकर आती हूँ। ऐसे बोलकर नानीमा मुस्कुराने लगी। वहीं रौनक और वंशिका एक दूसरे को देखते हुए शर्माकर अपने कमरे में चली गई। रौनक होले से मुस्कुराते हुए सोच रही थी, इस छछुंदर को इतनी सी भी अकल नहीं है कि दूसरों के सामने उसे किस तरह से बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए रौनक और बाकी सब भी हंसते मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह पूरे घर में शादी की तैयारी चल रही थी। आस्था अगली सुबह जैसे ही उठी उसने देखा कि अरमान ने उसे बड़े प्यार से पकड़कर रखा हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। आस्था अरमान का चेहरा देखकर मुस्कुराने लगी। नींद में भी अरमान ने आस्था को इस तरह से पकड़ा हुआ था मानो कि अगर उसने थोड़ी सी भी आस्था पर पकड़ ढीली कर दी तो आस्था उसे छोड़कर कहीं चली जाएगी। कुछ देर तक आस्था अरमान के हैंडसम से चेहरे को देखने लगी थी। हल्की हल्की अरमान की शेविंग बढ़ी हुई थी, लेकिन अरमान का एकदम डैशिंग और हैंडसम चेहरा देखकर आस्था के दिल में अचानक ही गुदगुदी सी महसूस होने लगी थी। कहीं ना कहीं आस्था की आंखों के सामने वो सारे मोमेंट्स याद आ गए थे जब वो पहली बार अरमान से मिली थी। उसने पहली बार मिलते ही अरमान को एक घर का मामूली सा माली समझ लिया था। उसे इस बात का दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं था कि जिसे वो मामूली सा माली समझ रही है असल में वही उसे घर का और उसकी जिंदगी का मालिक बन जाएगा। कहीं ना कहीं अरमान के साथ अपनी पहली मुलाकात याद आते ही वो थोड़ी सी शर्मा उठी और किस तरह से अरमान पहले कितना ज्यादा खूंखार हुआ करता था, पूरी तरह से डेविल किंग का रूप धारण किए रहता था, कब किसको कहां खत्म कर दे, किसे मार दे, उसका कुछ पता नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से अरमान सिंघानिया को मोहब्बत हुई थी, या यूं कहें अरमान सिंघानिया को इश्क हुआ था, तब से अरमान सिंघानिया एक नॉर्मल इंसान बनता चला जा रहा था। अब अरमान की केवल गुड साइड ही आस्था को देखने को मिलती थी। अरमान अब अपनी नींद में भी सपने में भी आस्था को इतनी सी भी ठेस या चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आस्था उसका एक ऐसा जुनून, उसकी एक ऐसी चाहत और उसकी गहरी मोहब्बत बन चुकी थी जिसे दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। हालांकि इस बात से बेखबर अरमान जिसकी जिंदगी क्या तूफान लेकर आने वाली है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। फिलहाल इस वक्त अरमान बड़े सुकून से आस्था के साथ लेटा हुआ था। फिलहाल आस्था ने अरमान के बिखरे हुए बालों को थोड़ा सा अपनी उंगलियों में फंसाकर ठीक किया और मुस्कुराई, और अचानक आगे बढ़कर उसने आज खुद से पहली बार अरमान के होठों को हल्का सा किस कर दिया। अरमान आस्था के किस से मुस्कुरा उठा। अब अरमान को मुस्कुराते हुए देखकर आस्था को यकीन हो गया कि जरूर अरमान सिर्फ सोने का नाटक कर रहा है। आस्था शर्मा उठी और उसने अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लिया। अरमान ने आगे बढ़कर आस्था के माथे को किस किया और कसकर उसे लगाकर बोला, गुड मॉर्निंग जान। तब आस्था ने उठकर अरमान को गुड मॉर्निंग विश किया और जल्दी से एक साथ खड़े हुए अरमान ने कहा कि आज हम दोनों एक साथ नहाएंगे। आस्था ये सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि आस्था कुछ दिनों से अरमान के साथ नफरत का दिखावा करते हुए और साथ ही साथ राजवीर पर गुस्से और इन सारी बातों ने आस्था को काफी परेशान कर दिया था।
लेकिन अब आस्था बस अपनी जिंदगी पूरी तरह से सुकून से जीना चाहती थी। अब उसकी जिंदगी में दूर दूर तक कोई दुश्मन नहीं था। सबको अरमान अच्छी खासी सजा दे चुका था। अब जल्द ही आगे बढ़कर अरमान ने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था और उसके माथे को चूमते हुए बोला था, अब जो कुछ मैं कहूंगा वो सिर्फ और सिर्फ आप वही करेंगी, ठीक है? आस्था ने केवल अपनी पलकें झुका ली थी। वो अरमान की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि इस वक्त अरमान शर्टलेस था और उसने आस्था को उसी तरह से अपनी गोद में उठाया हुआ था। आस्था ने जल्दी ही अपना चेहरा अरमान के चौड़े सीने पर रख दिया था और बड़े प्यार से उसे सहलाने लगी थी। अब तो आस्था के इस तरह से छूने से अरमान के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया था और अचानक उसने आगे बढ़कर आस्था के होठों को कैप्चर कर लिया और सीधा बाथरूम में ले आया था। अरमान के कमरे जितना ही बड़ा उसका शानदार बाथरूम भी था। अब जब वे बाथरूम में आ चुके थे तो जल्द ही उसने आस्था को उसकी नाइटी से आज़ाद किया और खुद आगे बढ़कर बॉडी वॉश आस्था के शरीर पर अप्लाई करने लगा था। अरमान के छूने से ही आस्था पूरी तरह से शर्मा उठी थी। आगे बढ़कर अरमान ने उसे कसकर गले से लगा लिया था और दोनों एक साथ बाथटब में थे। कुछ ही देर में आस्था की मनमोहक आवाज़ें वहां गूंजने लगी थीं और आस्था की जैसे ही आवाज अरमान सुनता वो उतना ही ज्यादा उसे और प्यार करता। आस्था आज खुलकर शर्माई थी। पूरी तरह से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। अरमान आस्था की प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए उसके साथ रिलेशन बना रहा था। वो उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। कितनी देर तक आस्था के साथ नहाने के बाद और उसे दिल खोलकर प्यार करने के बाद अरमान ने उसे बड़ी अच्छी तरह से नहलाया और खुद भी नहाया। अब अरमान और आस्था एक साथ अच्छे से फ्रेश होकर दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने। आस्था ने एक सफेद रंग की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी थी। अरमान ने अपने हाथों से हीरे का हार पहनाया जिसमें आस्था की खूबसूरती निखर कर सामने आ रही थी। आस्था किसी राजकुमारी लग रही थी। अरमान ने भी सफेद रंग का कोट आस्था के साथ मैचिंग का पहना था। दोनों बड़े ही अच्छे लग रहे थे। जैसे ही दोनों अपने कमरे से बाहर निकले उन्होंने देखा कि पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आस्था ये देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में नानी माँ की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। नानी माँ किसी से डांटते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आस्था चौंक गई और घबराकर सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ और नानी माँ किस पर चिल्ला रही हैं। तो आस्था जल्दी से नीचे गई। जैसे ही वो नीचे आई उसने देखा कि उसके सामने उसके मामा मामी और साथ ही साथ प्रियंका खड़ी हुई थी। प्रियंका का बायां गाल पूरी तरह से जला हुआ था और ये देखकर एक पल को आस्था भी प्रियंका से डर गई थी। तब आस्था ने चोरी छिपे अरमान की ओर देखा और तब आस्था की नजरें खुद पर महसूस करके अरमान दूसरी तरफ देखने लगा। ठीक उसी वक्त राघव वहां आया। राघव के भी गाल के एक तरफ इसी तरह से जले हुए निशान थे। अब तो आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी प्रियंका आगे बढ़कर आस्था के सामने माफी मांगते हुए रोते हुए बोली, जो कुछ भी मैंने आज तक गलती की है मैं उसके लिए तुमसे माफी चाहती हूं। आस्था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी प्रियंका के माता पिता यानी कि आस्था के मामा मामी तुरंत आगे आते हुए बोले, अरमान जी, आपने प्रियंका और राघव की शादी करवाकर हमारे सिर पर से बेटी की शादी का बोझ उतार दिया है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि अरमान ने राघव और प्रियंका की शादी करवा दी थी, अब मनोज जी और उसकी पत्नी दोनों को ही अपने किए पर पछतावा था और वे अपनी माँ साथ ही साथ आस्था से माफी मांगने के लिए आए हुए थे। तब आस्था ने एक नजर नानी माँ की ओर देखा, जो मुंह फुलाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि नानी माँ को भी इस बारे में पता चल चुका था कि उनकी जो किडनैपिंग हुई थी वो प्रियंका ने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर करवाई थी, जबकि वे आस्था को अगवा करना चाहते थे, इसीलिए नानी माँ उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जब आस्था ने प्यार से नानी माँ का हाथ थामते हुए होले से मुस्कुराकर बोली, मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है नानी माँ, और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी से सारी दुख, नफरत और बदले की भावनाओं को खत्म कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपनी कड़वाहट खत्म कर देनी चाहिए और इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। आस्था की बात सुनकर नानी माँ की आंखें छलक उठीं और उन्होंने आस्था को गले से लगा लिया और फीकी मुस्कान लाते हुए बोली, वाकई मेरी बच्ची, तेरा दिल सोने का है, सोने का। उन्होंने आस्था के माथे को चूम लिया। वाकई तेरे जितना बड़ा रहम दिल कभी किसी के पास नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी आस्था के पास ही हो सकता है। ये बोलकर नानी माँ ने आगे बढ़कर सबसे पहले आस्था के माथे को चुम्बा और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और फिर आगे बढ़कर अपने बेटे, बहू और प्रियंका को भी गले से लगा लिया और सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आज पहली बार आस्था की मामी सीमा की आंखों में पछतावे के आंसू थे। कहीं ना कहीं नानी माँ को उनके परिवार के साथ देखकर आस्था ने मन ही मन में राहत की सांस ली थी और उसके दिल से एक अजीब सा बोझ उतर गया था। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। आहान, रौनक की शादी होने वाली थी ध्रुव की वंशिका से, एंजल की अविनाश से और सुमित की राधिका से। सभी चारों कपिल बड़े बेहतरीन तरीके से तैयार हुए थे।